श्लोक संख्या 24। त्वं खलो ओषधि बीजानि प्राक् सृष्टानि स्वयंभुव न मुञ्चसि आत्मरुद्धानि माम् अवज्ञाय मन्दधि। त्वं कल्वौषधिबीजानि कल्वौषधिबीजानि प्राक्सृष्टानि स्वयंभुवा न मुञ्चस्यात्मरुद्धानि मामवज्ञाय मन्दधीः त्वं कल्वौषधिबीजानि प्राक्सृष्टानि स्वयंभुवा न मुञ्चस्यात्मरुद्धानि मामवज्ञाय मन्दधीः। त्वं कल्वौषधिबीजानि प्राक्सृष्टानि स्वयंभुवा शब्दार्थ इस प्रकार है। त्वं तुम खलु निश्चय ही औषधि जड़ी बूटियां तथा अन्नों के बीजानि बीज प्राक पूर्व काल में सृष्टानि उत्पन्न स्वयंभुवा ब्रह्मा द्वारा न नहीं मुंचसि देती हो आत्मरुत्थानि अपने भीतर छिपाए हुए माम मुझको अवज्ञाया आज्ञा का पालन ना करके मंददी अल्पबुद्धि वाली। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तुमने इस तरह अपनी बुद्धि गंवा दी है कि मेरी आज्ञा को आज्ञा के होते हुए भी तुम जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीज नहीं दे रही हो, जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था और जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए हैं। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड में लोकों की सृष्टि करने समस्त समय ब्रह्मा जी ने विविध अन्न जड़ी बूटियों पौधों तथा वृक्षों के बीज भी उत्पन्न किए थे। जब बादल प्रचुर जल बरसाते हैं तो बीज उगकर फल अन्न साख इत्यादि उत्पन्न करते हैं। पृथु महाराज अपना उदाहरण देते हुए यह संकेत देते हैं कि जब भी अन्न का अभाव हो तो सरकार के अध्यक्ष को चाहिए कि वह देखे कि उत्पादन क्यों रुका हुआ है और उसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जाए। ओम ज्ञान विरांदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामेहं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्मैष्टमांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणलिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतराधा कांतनमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अभी प्रसंग इधर चल रहा है, महाराज पितु का पृथ्वी पर कुपित होना। तो आप सबको मालूम है कि किस प्रकार पृथ्वी माँ वो अनाज इत्यादि दे नहीं रहती, औषधि नहीं दे रहती, पितु महाराज की आज्ञा सुनने की बात में नहीं दे रहती। तो पितु महाराज बहुत क्रुद्ध हुए। क्रुद्ध होके जब पृथ्वी माँ जो गाय का रूप धारण करके आई थी तो उनके सामने जब तलवार उठाए, पृथ्वी माँ ने कहा कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो एक स्त्री हूं, क्योंकि पृथ्वी तो देवी है माँ है, और दूसरा है मेरे को गाय का रूप धारण कर चुकी हूं, तो एक स्त्री को मारना, एक गाय को मारना ये ठीक नहीं है, दंड देना ठीक नहीं है। अभी पृथु महाराज क्या कर रहे हैं, पिछले तीन श्लोकों में से यानी आज का श्लोक से लेके यानी 22वां श्लोक से लेके मेरा तुमको दंड देना उचित है, ये क्यों उचित है इसका वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि वैसे धर्म के हिसाब से देखा जाए स्त्रियों को दंडित नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, दंडित नहीं करना चाहिए, और दूसरा है गाय को तो मारना ही नहीं चाहिए। तो ये स्त्री का स्त्री भी है और भी गाय का रूप भी धारण किया पृथ्वी मां। तो पृथ्वी महाराज ने ऐसा क्यों किया, एक तरीके से देखा जाए शास्त्रों में कुछ बातों के हिसाब से सही बात है, स्त्री को दंडित नहीं करना है, और दूसरा है गाय को दंडित नहीं करना चाहिए, और दूसरे हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने गलती किया है, तो गलती किया है तो उसको दंड देना उचित है कि नहीं। इस प्रकार विरोधात्मक जो बातें हैं हमको शास्त्रों में प्राप्त होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की दुविधा केवल हमको ही नहीं पृथ्वी महाराज को भी आता है, हर व्यक्ति को आता है। किम कर्मा किम अकर्मे यदि कवयो यत्र मोहिता, भगवता भगवान कहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या उचित कर्म है क्या अनुचित कर्म है, कौन से प्रसंग में कैसे किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो ये कवयो यत्र मोहिता, बड़े बड़े कवि लोग भी बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। तो इसलिए भगवता भगवान कहते हैं तस्मात शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो, शास्त्र के प्रमाण के ऊपर आधारित होकर हुए निर्णय करो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी शास्त्र ही पढ़ने जाएंगे तो शास्त्र पढ़ के भी करने जाएंगे तो शास्त्रों में बड़े बड़े विरोधास्पद बातें दिखाई पड़ता है। कभी एक शास्त्र कहता है आप युद्ध करो, भगवता में भगवान ने ही कहा अर्जुन का जो समस्या थी शुरुआत में देखेंगे, अर्जुन वो क्या सोच रहा था कि युद्ध करना जो है वो ठीक नहीं है, वो निम्न श्रेणी लोगों के लिए है, अर्थशास्त्र को पालन करते उन लोगों के लिए युद्ध करना ठीक है, प्रतिशोध करना या कोई टिट फॉर टैट, अगर उसने ईंट का जवाब पत्थर से, इस प्रकार की जो बातें जो है वो धर्मशास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं है, वो अर्थशास्त्र के हिसाब से ठीक है, मैं धार्मिक हूं मैं धर्मशास्त्र के हिसाब से कार्य करूंगा। तो कुछ बातें जो धर्मशास्त्र के हिसाब से सही है वो अर्थशास्त्र के हिसाब से गलत है। और देखा जाए भगवान ने कहा अर्जुन को तुम युद्ध करो, ने कहा कि ज्ञान शास्त्र के हिसाब से तो तुमको करना चाहिए। तो जो धर्मशास्त्र के हिसाब से कुछ चीज सही है जो ज्ञान शास्त्र के हिसाब से गलत है, और जो चीज ज्ञान शास्त्र के हिसाब से सही हो सकता है वो भक्ति शास्त्र के अनुसार गलत हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार की जो शास्त्र है उसके अनुसार अलग अलग प्रकार की जो बातें बताया गया उसकी वजह से उसमें भी मोहित हो जाते हैं व्यक्ति। तो पृथु महाराज साक्षात भगवान के शक्तावेश अवतार है, वो मोहित नहीं हुए। ये स्त्री का रोज ये स्त्री है मतलब पृथ्वी माँ जो है एक स्त्री है, स्त्री के अभी भी वो भी गाय का रूप धारण करके आई है, आके जब रोने लगी मुझे दंड मत दो, ये बात सुन के पृथु महाराज मोहित नहीं हुए। पृथ्वी महाराज जो है वो एकदम बिल्कुल एक शासक को जो करना चाहिए उचित कार्य वो कर रहे हैं। शासक को क्या करना चाहिए, उनका कर्तव्य है कि समाज जो है प्रजा जो है वो सब कुशल रहे, सभी खुश रहे, जो सही करता है उसको इनाम दे और जो गलत करता है उसको दंड दे, ये जो बात जो है ये हर शासक को अपना जिम्मेदारी कर्तव्य मान के रखना चाहिए। पृथु महाराज को शक्ति आवेश अवतार के रूप में हम जानते हैं, लेकिन किस प्रकार की शक्ति आवेश अवतार है, भूपालन शक्ति, भूपालन शक्ति के द्वारा आवेशित हुए हुए अवतार है। वैसे नारद जी जो है भक्ति शक्ति का आवेश अवतार है, चार कुमार जो है ज्ञान शक्ति का आवेश अवतार है, भगवान के अंदर अनंत अनेकों अनेकों शक्तियां होती हैं। तो उन शक्तियों के द्वारा जब एक विशेष जीव को आवेश देते हैं या उसको वो शक्ति प्रदान करते हैं उनको शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है। साहित्य शक्ति का आवेश अवतार है व्यासदेव, वैसे अनेकों अनेकों तपशक्ति का आवेश अवतार जो है नर नारायण है, वैसे अनंत देव भी वो दूसरे प्रकार के शक्ति आवेश अवतार है। तो तो इधर हम जान सकते हैं भू पालन शक्ति, पालन करने की जो वास्तविक सामर्थ्यता किसी के पास नहीं है, भगवान के पास ही होता है। पालक वास्तविक पालक है भगवान, वास्तविक राजा है भगवान। तो कृष्ण क्या करते हैं, उनके अंदर जो पालन करने की जो शक्ति या सामर्थ्य है वो सामर्थ्य एक विशेष जीव में जो प्रदान करते हैं, तब उसको शक्ति आवेश का अवतार कहा जाता है, उनको भगवान ही कहा जाता है क्योंकि साक्षात भगवान की शक्ति उनके पास है। अभी पृथु महाराज भगवान है, भगवान की शक्ति प्राप्त है उनके पास, शक्ति आवेश अवतार है। तो वो कैसे एक पालक होना चाहिए, जैसे प्रभुपाद अपने तात्पर्य लिखते हैं, पृथु महाराज इधर सबको दिखा रहे हैं ना कि वह देखे कि ये सबको ये बता रहे हैं, सारे शासकों को बता रहे हैं कि प्रशासन को कैसे होना चाहिए, उसका एक मार्गदर्शन दे रहे हैं। जब भी अन्य की कभी हो, उस अन्य की उत्पादन करने के लिए, जड़ी बूटियों को उत्पादन करने के लिए उचित व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, उचित व्यवस्था राजा को करना चाहिए, उनका परम कर्तव्य है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े उनको करना चाहिए क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। राजा मतलब क्या है, जो प्रजा को अपने पुत्र के रूप में देखभाल करता है। जब पुत्र के रूप में जब देखभाल करता है तो भले ही कोई भी कार्य की वजह से, किसी की काम की वजह से, किसी कारण की वजह से पुत्रों की, संतान की यानी बच्चों की, प्रजा की कुछ नुकसान होता है या उसमें उनकी अन्न में या जड़ी बूटियों में कमी होता है, उनका जो मूल कारण है उसके लिए जो दुष्ट लोग हैं, उनके लिए जो कारक है, उनको सजा देना, उसको ठीक करना राजा का कर्तव्य होता है। तभी हम इधर देख सकते हैं पृथ्वी माँ अभी गाय का रूप धारण की है और वो अन्न नहीं दे रही है। अभी पृथ्वी महाराज इस श्लोक में खास करके ये बता रहे पृथ्वी माँ को कि तुम्हारा कर्तव्य है अन्न देना, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम क्या है, त्वं खलु औषधि बीजानि प्राक सृष्टानि स्वयंभुवः। ये कोई नई बात नहीं है, कोई ये मत सोचो कि तुम्हारे पास आके लोग मांग रहे, तुम बड़ा दयावश तुम दे रही हो, ये तुम्हारा चीज नहीं है। प्राक सृष्टानि, प्राक मतलब बहुत साल पहले जब सृष्टि हुई थी उस समय की बात है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था, स्वयंभुव मतलब ब्रह्मा जी ने तुम्हारे गर्भ में अनेकों अनेकों बीजों को प्रदान किया था। ये ब्रह्मा जी का कार्य है, सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है कि तुम्हारे अंदर बीज है, जब बारिश गिरता है तो उसको उस प्रकार की बीजों को, अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों को, अन्न है और फल है, फूल है और सब्जियां हैं, इन सबको उगाना जो है वो तुम्हारा कर्तव्य बनता है। ठीक है, तुम कर्तव्य को भूल गई, मैं तुमको याद भी दिलाया था तुम उत्पन्न करो, लेकिन करने के बाद भी उन्हें कहा कि माम अवज्ञाया, तुमने मेरी अवज्ञा की है, ये दूसरा तुम्हारा बात है। क्योंकि कोई समझाने के लिए सबसे पहला बातों से समझाया जाता है, उसके बाद भी अगर नहीं समझोगे बातों से तो क्या करोगे, दंड देना ही पड़ता है क्योंकि साम वेद हाँ ये सब चार प्रकार के जो बोध की जो शिक्षा देने की तरीका है उसमें आखिरी है दंड। इतनी बार भी अलग अलग तरीके से बताने के बाद भी अगर नहीं समझोगे तो दंड देना आवश्यक है। तो पहले शास्त्र में कहा गया है कि स्त्रियों की, बच्चों की, बुढ़ों की और पागलों की, चार प्रकार के लोगों की बातों को या उनके जो गलतियों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ज्यादा उसको सीरियसली तो क्या बोलेंगे, कैसे इसको ज्यादा गंभीरता से लेना नहीं चाहिए, स्त्रियों की बात और स्त्रियों की गलतियों को, बच्चों की गलतियों को और पागल की गलतियों को और वृद्ध व्यक्ति की गलतियों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अगर कोई इसको गंभीरता से लेता है वो खुद पागल हो जाता है। तो इसलिए चार चाणक्य कहते हैं, चार प्रकार के लोगों की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन साथ साथ में भी कहा गया है अगर कोई दोषी हो जाता है या इन चारों में कोई दोष रहता है और उसको दोष का निवारण करने का प्रयास नहीं किया जाए तो सारा समाज में उत्पात मच सकता है। अभी देखिए खासकर के ऐसा सभ्यता है, भारतीय सभ्यता में घर में कोई लड़का गलती करता है ना, कोई गलत करता है, कुछ नटखट करता है तो ज्यादा उसको दंड नहीं देते, खाली डांट दिया जाता है। लेकिन अगर बेटी कुछ गलत कर देती है तो उसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि समाज के ऊपर उसका प्रभाव बहुत रहता है। क्योंकि समाज किसके ऊपर आधारित है, माँ के ऊपर आधारित है। अगर बेटी को बराबर ट्रेनिंग नहीं दिया जाए तो समाज में बहुत उत्पात मच सकता है बाद में। तो एक तरीके से देखा जाए स्त्रियों की जो गलतियों को गंभीरता से लेना चाहिए, और दूसरी तरीके से देखा जाए उसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है। ये बड़ा सूक्ष्म विचार है जो खास करके भारतीय सभ्यता में जो जन्म लिया है उसको देखा है। ये सूक्ष्म विचार और स्वाभाविक तरीके से उनके अंदर आता है। अब देखिए, कहीं कोई गलती करते हैं उनको डांटा जाता है, उसको सुधारा जाता है। तो खास करके इधर जहां समाज के ऊपर जहां प्रभाव गिरने वाली जो बातें होती हैं, खास करके इधर पृथ्वी मां अगर उत्पन्न नहीं करे तो क्या होगा, सारा प्रजा भूखे हो जाएगी, प्रजा अस्तव्यस्त हो जाएगी और शासन अस्तव्यस्त हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी महाराज ने बहुत कठोरता से, बहुत सीरियसली उनको स्वीकार किया। तो अभी मैंने एक प्रकार की अभी जो दुविधाजनक बातें है चर्चा किया है। एक तरीके से बताया गया कि शास्त्रों में इन चार लोगों की बातों को बड़े गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। दूसरी ओर बताया गया है कि अगर ये गलती करते हैं तो बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों है, इसके लिए बहुत सूक्ष्म विचार की आवश्यकता है। एक तरीके से देखा जाए ये सही बात है, क्योंकि ये चार लोगों को गलती करना उनका स्वभाव है। वो स्वभाव होने के नाते उसको बड़े गंभीरता से लेके उनको ऐसा मत कर दो ताकि वो परेशान हो जाए, वो बिल्कुल वो भी बड़े दुखी हो जाए। साथ साथ में ये समझना चाहिए अगर स्त्रियों का जो चरित्र में थोड़ी सी भी गलती होता है समाज की ओर बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए उनको सुधारो, तुरंत पहले से सुधार दो। इससे दोनों प्रकार की बातों को हम सुनते हैं। खास करके इधर पृथु महाराज क्या कर रहे हैं, इधर क्या कहते हैं, हे पृथ्वी मां सुनो, तुम्हारे अंदर जो बीज का आरोपण किया गया ना, वो ब्रह्मा जी ने किया है। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया है, सृष्टि मतलब जो डिजाइन तुम्हारा वैसा है उसी के अनुसार तुमको चलना चाहिए। क्योंकि अलग से कुछ करने जाओगी तो ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा। प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा तो निश्चित रूप में वो समाज के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। उसके वजह से खुद भी दुखी होंगे और बाकी लोग भी दुखी होंगे। ये प्रकृति का जो नियम है वो भगवान स्वयं ने बनाया है। स्वयं भगवान भी जब आते हैं, भले उन्होंने अलौकिक कार्यों को, लीलाओं को दिखाया, फिर भी प्रकृति के नियमों को वो उनके अंदर दखलंदाजी नहीं करते हैं। स्त्री को जैसा होना चाहिए स्त्री को होना चाहिए, वो पुरुष को जैसा होना चाहिए उस प्रकार पुरुष को होना चाहिए, एक माँ को जैसे व्यवहार करना चाहिए वैसे व्यवहार करना चाहिए, एक पिता को कैसे व्यवहार करना चाहिए ऐसे व्यवहार करना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना निर्धारित कर्तव्य होता है प्रकृति के अनुसार, उनके अनुसार ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। खास करके इधर पृथ्वी का स्वभाव है, उनका प्रकृति का जो नियम है, बारिश गिरे तो अंदर बीज है तो उगना चाहिए। पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था कि चावल दाल तो अलग बात है कि अभी तो बहुत सारे औषधियां हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ चीजें हैं, वो बीज आरोपण करने की जरूरत नहीं पड़ता था, बारिश गया तो अपने आप उगना शुरू होता था। तो अभी मुझे मालूम है मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे जो तरकारी है खास करके साग है, उसके लिए कोई बीज आरोपण नहीं करते थे हम लोग, उसका साग का सब ये लगाएंगे बीज डालेंगे, नहीं, अपने आप जाओ खेती में जाओ, अलग अलग प्रकार के साग मिलता है उसको उठा के लेके आओ। तो कभी कभी ऐसे ऐसे होते थे जंगलों में को अपने आप आम का पेड़ उग जाता है, अपने आप कुछ इसका पेड़ उग जाता है, तो कोई चावल जैसे खेती करके बीज डालना उसको कुछ होता ही नहीं था, अपने आप उगता था। यानी पृथ्वी में ये सब पहले से ही ब्रह्मा जी ने किया है। तो इसकी वजह से इधर कहा गया है कि न मुच्छन्ति आत्म रुद्धानी, तो न मुच्छन्ति आत्म रुद्धानी, तो तुम्हारे भीतर जो बीज आरोपण ब्रह्मा जी ने किया है उसको क्या करो, उसको कभी भी अपने पास ही मत रखो, उसको छोड़ो। अभी तुम उनको उगा नहीं रहो, इसकी वजह से इसका अर्थ क्या है, इसकी वजह से क्या पता लग रहा है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मां आज्ञा, मेरी आज्ञा को पालन नहीं करने की वजह से तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अभी श्री प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो नेता होते हैं या जो भी सरकार होता है उनका सबसे पहला कर्तव्य यह है कि ये देखना कि सारे समाज में अनाज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। ये सबसे पहला कर्तव्य है सरकार का। जो भी शासक है, जो भी राजा है, उनका सबसे पहला कर्तव्य यह है कि सारे जगत में सारी प्रजा को प्रचुर मात्रा में अन्न मिले, सबको औषधि मिले, सबको सब्जियां मिले, सब मिले। लेकिन आजकल की जो सरकार का जो मूल केंद्र है या उनका विचार है वो औद्योगिक हो गया है। वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा उतना फैक्ट्री निर्माण करेंगे, हम खेती के जमीन को फैक्ट्रियों में बदली करेंगे। अभी ये फैक्ट्रियों को बदली रूप में बदली करने से क्या हो रहा है, पृथ्वी माँ के ऊपर शोषण हो रहा है। इस प्रकार की जो शोषण की वजह से क्या हो रहा है, प्राकृतिक अस्त व्यस्तता हो रही है, पृथ्वी माँ को परेशान किया जा रहा है। अभी आजकल के जो नेता लोग क्या करते हैं, वो पृथ्वी माँ को परेशान कर रहे हैं। इधर पृथ्वी महाराज पृथ्वी माँ को क्या कर रहे हैं, उनको दंड दे के ठीक कर रहे हैं। अब देखिए, माँ जब एक बच्चे को मारने जाती है, एक अज्ञान व्यक्ति सोच सकता है कि माँ जो है वो बच्चे दुश्मनी है, उसको मार रही है, बड़े कठोर है। लेकिन वो एक ज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि माँ जो है बच्चे को सुधार रही है। अभी देखिए कार्य एक ही है, पृथ्वी माँ भी इधर है, इधर पृथ्वी महाराज है। पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी माँ को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या उनको दंड दे के उनसे अन्न की उत्पादन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आजकल की जो औद्योगिक सरकार है, जो सरकार औद्योगिक विचार रखता है, वो क्या करता है, पृथ्वी से पृथ्वी को शोषण किया जाए। एक तरीके से देखा जाए आधुनिक सभ्यता में स्त्री के विषय में हो रहा है। वो लोग कहते हैं कि वैदिक सभ्यता के अनुसार स्त्रियों को शोषण किया जाता था, उनको घर से बाहर निकलने नहीं देते, अकेले में, और उनको बहुत सारे घर के काम दे देते। अभी हम उस प्रकार की जो चीजें हम नहीं चाहते, हम सबको समान को स्त्रियों को समान स्वेच्छा देना चाहते हैं। लेकिन असियत में क्या हो रहा है, आधुनिक सभ्यता जो है वो आधुनिक विचार जो पाश्चात्य विचार क्या है, स्त्रियों को शोषण करने के विचार है। और भले ही दिखाई पड़ रहा है कि वैदिक सभ्यता जो है स्त्रियों को शोषण करती है, लेकिन वैदिक सभ्यता क्या करे, स्त्रियों को रक्षा कर रही है, जिसके द्वारा सारे समाज की रक्षा हो। अभी एक है आजकल की औद्योगिक सरकार, पृथ्वी माँ को भी शोषण कर रहे हैं, तो या उनको भी दंड दे रहे हैं, उनके अंदर ड्रिलिंग मशीन घुसाना, वो करना, ये सब करना, लेकिन इसको शोषण कहा जाता है। दूसरा क्या है, उनको ठीक करने के लिए दंड कहा जाता है। अभी दंड क्या है और शोषण क्या है, उन दोनों के बीच में लाइन क्या है, व्हाट इज दैट लाइन, कोई कह सकता है कि ऐसा कौन सा रेखा है जिस हद तक हम ये कह सकते हैं कि ये शोषण है, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि ये उनको सुधारने के लिए है। तो ये जो है ये शास्त्र के ऊपर आधारित है, जो शास्त्र के अनुसार कार्य करता है, भले ही वो दंड देने की कार्य क्यों ना हो, उसको शोषण नहीं कहा जाता है। लेकिन शास्त्र के विरुद्ध अगर होता है, भले ही उसको बला करने की कार्य क्यों ना हो, वो शोषण माना जाता है। ये आजकल जो है आप देखिए कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव की वजह से लोग सोचते हैं कि स्त्रियों को समान हक होना चाहिए, लेकिन ये शास्त्र के विरुद्ध होने की वजह से भले ही सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको शोषण माना गया है। और दूसरी ओर वैदिक सभ्यता के अनुसार बहुत कठोर नियम दिए गए स्त्रियों के लिए, तो ऐसा दूर से लगता है कि शोषण है, लेकिन शास्त्र के आधार के ऊपर होने की वजह से उसको शोषण नहीं माना गया, बल्कि रक्षा माना गया, सुरक्षा माना गया है। अभी इधर पृथ्वी महाराज जो पृथ्वी के पीछे पड़े हुए हैं और पृथ्वी माँ को दंड देने के लिए आए, थोड़ा तलवार लेके आए, लेकिन वो जो है उसको क्या कहा जाए, पृथ्वी माँ को अपनी कर्तव्य को समझाने के लिए हो रहा है। लेकिन आजकल के जो लोग जो है पृथ्वी को अलग अलग तरीके से उससे खनिज उत्पादन निकालना, अनेकों अनेकों तरीके से इसको करना, भरिंग दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि प्रगति हो रहा है, पृथ्वी माँ से बहुत सारे चीजें निकल रहा है, बहुत बड़े बड़े माइंस खनिज निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये शोषण है क्योंकि वो शास्त्र के विरुद्ध है। जैसे खेती भी, आजकल जो खेती होता है वो किसके बल पे होता है, यूरिया के हिसाब से होता है, केमिकल डाल के होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि पृथ्वी माँ बड़े प्रसन्न होकर दे रही है। नहीं, पृथ्वी माँ के ऊपर शोषण किया जा रहा है आधुनिक विज्ञान के आधार के ऊपर, क्योंकि वो शास्त्र के विरुद्ध खेती है। जो शास्त्र के जो सम्मत में जो खेती है, वो जो खेती है वो पृथ्वी माँ बड़े प्रेम से देती है। लेकिन ये जो आजकल बड़े उत्पादन ज्यादा हो रहा है, उत्पादन ज्यादा होने पर भी वो शोषण माना गया है। जो प्रेम से अच्छी तरीके से जो मां देती है स्वाभाविक तरीके से प्रकृति के नियम के अनुसार, उसको जो पालन करता है वो अस्तित्व में वो सुखी हो सकता है, उसके द्वारा समाज सुखी हो सकता है। आजकल जो है लोग पड़े हुए औद्योगिक प्रगति के विषय में, उनके उनके लिए क्या है, प्रजा को क्या चाहिए, उनको प्रजा को चाहिए मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, टीवी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, हाँ, और कोई सरकार ने कहा हम सबको सब लोगों को फ्री में लैपटॉप देंगे कोई सरकार कहता है कि नहीं हम सबको फ्री में वाईफाई देंगे, हाँ, कोई ये नहीं कहता है कि शुद्ध देसी गाय का दूध फ्री में देंगे, हाँ, कोई इसका विचार ही नहीं रखता कोई, है कि नहीं। तो आजकल की जो बुद्धि खराब हुआ, भ्रष्ट हुए सरकार है, क्योंकि कभी ये सोच ही नहीं सकते, इस प्रकार के विचार रख ही नहीं सकते। वो सोचते हैं कि वाईफाई देने से प्रजा सुखी हो जाएगी, कैमरा लगाने से कोई चोरी नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा। असत में कैमरा लगाने से थोड़ी ना चोरी बंद होगा, लोगों को गीता भागवत को उपदेश दो तभी वो सुधरेंगे, तभी उनके अंदर पाप विचार जाएंगे। तो आजकल की लोगों की सोच विचार जो है शास्त्र के विरुद्ध होने की वजह से, तो कितना भी प्रयास करे वो उस पर कभी सफल होंगे नहीं। मोघाशा भो कर्माण ज्ञान विचेतसा राक्षसी मासुरी चैवा मोह ज्ञान सचेतसा। भगवान भगवान इस बात को कहते हैं मोघाशा भो कर्माण, मोघाशा उनकी आशा क्या है, मोघ मतलब क्या है, कभी सफल होने वाला नहीं है। मोघ कर्माण उनके सारे प्रयास भी कभी सफल होने वाला नहीं है। क्यों सफल नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका विचारधारा शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो, शास्त्र के विरुद्ध होने की वजह से ये उनके कोई भी कार्य में कोई सफलता मिलने वाले नहीं है। बल्कि जितना वो प्रयास करेंगे शास्त्र के विरुद्ध, उनकी आशा के विरुद्ध, वो सुख के विरुद्ध क्या होगा, दुख ही दुख मिलने वाला है। वो जितना वो कैमरा लगा के सोचेंगे कि हम लोग ये पाप कार्य को बंद करेंगे, वो जितना कैमरा लगाए उतने का पाप कार्य बढ़ेंगे। एक ऐसा कहावत है, कहावत नहीं बल्कि सत्य बात है। मान लीजिए कोई अनाज है, अनाज का अभाव होता है ना उस समय ज्यादा व्यक्ति खाता है, प्रचुर मात्रा में अनाज होता है ना तब कोई कम खाता है। एक सरल सा साइकोलॉजी देखिएगा। साइकोलॉजी ऐसा है, मान लीजिए आप प्रसादम हॉल में बैठे हो, 50 लोग बैठे हैं, तब मान लो कि ऐसा आपको पता लगा कि प्रसाद कम है, तो क्या होता है, स्वाभाविक तरीके से लोग ज्यादा खाएंगे। अगर मान लो कि प्रचुर मात्रा में है तो शांति से जितना जरूरत है खाता है व्यक्ति। तो कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से एक प्रकार की स्कैर्सिटी क्रिएट किया जा रहा है। स्कैर्सिटी मतलब जो अभाव, धन खनिज में धन में अभाव को या धान में अभाव को क्रिएट किया जा रहा है, मार्केट में क्रिएट किया जाता है। आपको मालूम नहीं है, एक वैसे तो कॉफी चाय वगैरह पीते नहीं है दे बत लोग, लेकिन ऐसा हुआ था कि एक बड़ा सा देश है ब्राजील में, चाय की उत्पत्ति बहुत किया कर दिए थे, इतना चाय की उत्पत्ति कर दिए थे, अगर मान लो कि वो सब मार्केट में आ जाएगा वो चाय का दाम कम हो जाएगा। तो लोग क्या किए, बड़े बड़े जहाजों में चाय की चीजें आई थी, चाय के बीज आए थे, तो उन्होंने क्या किया, समुद्र में उसको फेंक दिया। क्यों फेंक दिया, ताकि भाव जो है वो कम हो जाएगा। खाली चाय के विषय में नहीं, कोई भी चीज के विषय में, सब्जियों के विषय में देखिए या अनाज के विषय में देखिए, अगर मान लो कोई अनाज का कोई और वस्तु का उत्पत्ति बहुत ज्यादा हो गया तो उसका दाम कम हो जाएगा करते उसको खराब किया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है। क्यों, क्योंकि लोगों के मन में एक स्कैर्सिटी उत्पन्न करना है, एक वस्तु की अभाव उत्पन्न करना है। आजकल लोगों के मन में मार्केट में अभाव उत्पन्न किया जाता है, जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं, और लोभी हो जाता है, लोभ बढ़ जाता है लोगों में। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दिया, प्रसाद मॉल में जैसे आपको पता लगा कि प्रसाद कम है, आपके मन में क्या उत्पन्न होता है, लोभ ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक साइकोलॉजी है। तो आजकल की सरकार क्या करता है, एक क्रिएट करते हैं, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी को क्रिएट करते हैं ताकि लोगों के मन में लोभ बढ़ जाए। जब लोगों के मन में लोभ बढ़ती है तो ये उस वस्तु को खरीदने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का शोषण हो सके। जितना व्यक्ति लोभी होता है उतना वो शोषण करता है और वो उसको शोषण करने का भी वो करवाने का भी एक पात्र बन जाता है। तो एक बहुत गहरा अज्ञान का छाया हुआ है पूरा समाज में। क्यों? क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध कार्य हो रहा है, शास्त्र के अनुसार नहीं कार्य हो रहा है। तो इसलिए इधर इस बात को कहा गया है, बहुत मेजर महत्वपूर्ण शब्द है। इधर ने कहा माँ वज्ञाय मंददी, जो व्यक्ति भगवान का आज्ञा को अवज्ञा करता है, आज्ञा को पालन नहीं करता है, उसको मंददी कहा गया, जिसकी बुद्धि मंद हो चुकी है। भगवान की आज्ञा क्या है? शास्त्रों में है, यानी शास्त्रों के विरुद्ध जो कार्य करता है, शास्त्रों की आज्ञा को पालन नहीं करता है, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, उसका बुद्धि मंद दीख आ गया है। He becomes a dull headed person, क्योंकि उनके पास भले ही ऐसा लगता है बड़ा बुद्धिमान है, इनके इनसे इनसे बढ़कर कोई बुद्धिमान नहीं है, क्या कितना चालाकी से कितना बुद्धिमत्ता से ऐसा उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया, ऐसा मशीन बनाया है जिससे वो इसकी उत्पत्ति ज्यादा हो सकती है, उन्होंने ऐसा केमिकल बनाया है, अगर खाली वो जाके इंजेक्शन दे दो छोटा बोपला तो इतना बड़ा हो जाता है एक दिन में। हाँ, ऐसा लगता है बड़ा बुद्धिमान है, एक बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चरल रिसर्च CFTR है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड रिसर्च। तो इसमें ऐसे ही रिसर्च किया जाता है, हम क्या करेंगे चावल से दही बनाएंगे क्योंकि इससे दूध की कमी हो रही है। अभी हम अभी ये जो एक भोपला लेंगे बहुत बड़ी चीज है, और एक छोटा सा एक ऐसा कोई और फल लेंगे, और भोपला का चीज से और छोटा सा फल दोनों को मिलाएंगे ताकि वो बड़ा फल हो जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के दिमाग लगाते हैं प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाने के लिए, और उसको बड़ा बुद्धिमान माना जाता है। और जो शास्त्र पढ़ता है शास्त्र के अनुसार चलता है बोलते हैं आपके पास बुद्धि नहीं है, खाली शास्त्रों को पालन करते हैं, अपना बुद्धि लगाओ बोलते हैं। तो अस्तित्व में वास्तविक बुद्धि वही है, वही वैदिक बुद्धिमान है। सब बुद्धिमान मनुष्य स्यात्, जो वही बुद्धिमान व्यक्ति है जो शास्त्र के नियम के अनुसार पालन करता है, जो भगवान के आदेश को अच्छी तरीके से यथारूप में पालन करता है, उसी व्यक्ति को बुद्धिमान कहा गया है। और उसके पास ऐसी बुद्धि होती है, भले शास्त्र में भी भले विरोधास्पद बातें दिखाई पड़े, उसमें भी कौन सा चीज को कहां लागू करना चाहिए वो बात को भी जानने की सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त होती है। अभी हमने ये जो आज का जो ये श्लोक है इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा किया। आज श्रील रसिकानंद प्रभु का भी तिरुभाव दिवस है, और साथ साथ में जगन्नाथ दास बाबा जी का भी तिरुभाव दिवस है। तो हम आज थोड़ा सा जगन्नाथ दास बाबा जी के विषय में चर्चा करेंगे। जगन्नाथ दास बाबा जी के विषय में गौराविर्भाव भूमे स्वम निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय नमः। तो ये जो प्रणाम मंत्र है श्रील भक्तिनोद ठाकुर ने रचना किया था। प्रणाम मंत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गौराविर्भाव में स्व निर्देश था सज्जन पर वैष्णव सार्वभौम। तो उन्होंने कहा कि जगन्नाथ बाबा जी कोई दास बाबा जी कोई और नहीं है, वैष्णव सार्वभौम है। सार्वभौम मतलब क्या है? वो सारे वैष्णवों के जो राजा है वो नेता है। तो जगन्नाथ बाबा दास बाबा जी हमारे गुरु परंपरा में उनका विशेष स्थान है, वेरी वेरी स्पेशल प्लेस जगन्नाथ दास बाबा जी का। भक्तिनोद ठाकुर जो है उनको शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया है, और जगन्नाथ दास बाबा जी जो है उनके जो परंपरा है वो बलदेव विद्याभूषण प्रभु के एक शिष्य थे जिनका नाम था उद्धव दास, और उन उद्धव दास के जो शिष्य थे उनका नाम था मधुसूदन दास बाबा जी। और ये मधुसूदन दास बाबा जी वो रहते थे वृंदावन में, पंडल परिक्रमा जाएंगे शाम सूर्य कुंड है उसके तट पे निवास करते थे, और उनसे जगन्नाथ दास बाबा जी ने दीक्षा ग्रहण किया। तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु उनके जो शिष्य के वो शिष्य माने जाते जगन्नाथ दास बाबा जी। जगन्नाथ दास बाबा जी का विशेषता ये थी कि वो 6 महीना वृंदावन में रहते थे, 6 महीने नवद्वीप में रहते थे, यानी वृंदावन से नवद्वीप जो है वो कभी कभी चल के जाया करते, वृद्धावस्था में वो टाइम में तो गाड़ी आ गया था, रेल आ गया था, उस समय रेल में चला करते थे। और जगन्नाथ बाबा दास बाबा जी का खास करके उनका इतना विशेषता ये है, वो वृद्ध अवस्था में भी वैसे चल भी नहीं पाते थे। उनका एक शिष्य था, उनका नाम था बिहारी, उनका शिष्य था। तो शिष्य क्या करते थे, वो जगन्नाथ दास में टोकरी में बैठा के वो उठा के लेके जाते थे। लेकिन जब रास्ते में जाते हुए उन्होंने देखा कि कहीं कीर्तन चल रहा है, वो कीर्तन जैसे सुना तुरंत वो टोकरी से कूद के नीचे कूदते थे और चार चार छह छह फुट ऊपर कूदते कूदते कीर्तन करते थे वो। अचानक से उनका पूरा आधा शरीर पैरालिसिस हो गया था, लेकिन फिर भी जैसे कीर्तन सुना तो उनका शरीर ऐसा लगता था कि जैसे बच्चे का शरीर होता है ना, उस प्रकार हल्के से वो कूदना शुरू करते थे। ये भक्तिनाथ ठाकुर से उनका मुलाकात हुआ 1880 के समय में। असलियत में भक्तिनाथ ठाकुर समय कलकत्ता में रहा करते थे। जगन्नाथ दास बाबा जी नवद्वीप से कलकत्ता कभी कभी उनके घर में आया करते थे और भक्तिनाथ ठाकुर उनको प्रसाद वगैरह परोसते थे। लेकिन फिर भी जगन्नाथ दास बाबा जी को लगता था कि बार बार जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उनके घर जाएंगे से बड़े आदर मिलता है मुझे, इतना अच्छी तरह सब कुछ प्रसाद वगैरह परोसते हैं, और भक्तिनाथ ठाकुर इतने महान हैं, इतने बड़े पदवी में पोस्ट में इतने बड़े विद्वान हैं, और उनसे इस प्रकार स्वीकार करना ठीक नहीं है। उनको शर्म लगता था, शर्माते थे। अब ये कितने महान वैष्णव अपने गुरु है वो भक्तिनाथ ठाकुर के, लेकिन उनके उनके घर में जाना उनको ऐसा लगता था, थोड़ा शर्म लगता था उनको। कभी कभी एकदम एक औपचारिक तरह में जाना पड़ता था, इसलिए जाया करते थे। और जगन्नाथ दास बाबा जी का ये खास विशेषता है। और उन्होंने जब भक्तिनाथ ठाकुर शिफ्ट हो गए, मतलब कलकत्ता से वो आए स्वानंद सुखदा कुंज गोद्रुम द्वीप में, तब जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा और भक्तिनाथ ठाकुर को, मुझे एक भजन कुटीर इधर बनाइए, ताकि भजन कुटीर इधर बनाइए ताकि जब वैष्णव लोग आएंगे अलग अलग जगह से आपसे मिलने के लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए, उनके लिए ठीक व्यवस्था हो, तो उधर जाके हम भजन करेंगे। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने उनके लिए एक बड़ा भजन अच्छा भजन कुटीर बनाया, उनके घर के आंगन के अंदर ही बनाया भजन कुटीर को। इस प्रकार जगन्नाथ दास बाबा जी अपने अपने कार्यों को करते थे, अपने भजन करते थे। और ऐसे उनके बारे में बहुत सारे कुछ अद्भुत लीलाएं हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी जब नवद्वीप में भजन करते थे गंगा के तट पे, उस समय लोग आके उनको दक्षिणा दिया करते थे, कोई आके 1 रुपए, कोई आके आधा रुपए, ऐसा ऐसा कोई दक्षिणा देते थे। कुछ समय के बाद बिहारी से पूछा कि कितना दक्षिणा मिला गिनो, तो बिहारी ने गिन के उनको दिया, बाबा जी इतना पैसा है। तो तुरंत जगन्नाथ दास ने कहा, इतना ही है, तुम कुछ चोरी किया है तुमने? तो बिहारी ने क्या किया था, उनको मालूम था जगन्नाथ दास बाबा जी पैसे किसके लिए मांग रहे हैं। तो बिहारी ने क्या किया था, उनका शिष्य ने थोड़ा सा 12 रुपए अपने पॉकेट में रखा था, बाकी सब जो पैसा जो है उनको दे दूंगा बाबा जी को। तो बाबा ने कहा, कितना पैसा छुपा के रखा दिखाओ। तो बिहारी हंसते हुए कहा कि 12 रुपए रखा था, निकाल के दिया। हस्तियत में जगन्नाथ बाबा ने कहा कि जो भी जी भिक्षा मिला है ना, मेरे लिए नहीं मिला है, मैं नवद्वीप धाम में रहता हूं ना, इसलिए मिला है। इसलिए क्या करो, ये नवद्वीप वासी है, धाम वासी है ना, उन सबको रसगुल्ला खिलाओ। तो धामवासी मतलब कौन है, सब गाय है कुत्ते है वो है, उनके लिए धामवासी है। तो वैसे तो बाबा जी लोगों को तो कोई दीक्षा दे ही देता है, लेकिन गाय कुत्ते धामवासी है उनको रसगुल्ला खिलाना। 200 रुपए के मिला था, उसे रसगुल्ला निकाल के सबको उन्होंने खिलाए बिहारी ने। एक बार जगन्नाथ बाबा जी प्रसाद दे रहे थे, तो उस समय 5 कुत्ते आए थे, कुत्ते के बच्चे होते ना वो आए थे, वहां के उनके साथ में प्लेट में प्रसाद खाने लगे। प्रसाद खाने लगे तो उनके बिहारी ने क्या किया, तुरंत कुत्तों को भगा दिया। तो जगन्नाथ बाबा जी ने कहा कि तुम कुत्तों को भगा दिया, हाँ उनको लेकर, तब तक जब तक कुत्ते नहीं आए तब तक मैं प्रसाद नहीं लूंगा। तुमने कहा ऐसा क्यों, ये तो गंदे है ना, कुत्ते होना नहीं चाहिए, कि धामवासी है। जगन्नाथ दास बाबा जी का विचार इस प्रकार का था। एक बार वृंदावन में जगन्नाथ बाबा जी जा रहे थे, रास्ते में एक झाड़ू मारने वाला था, तो तुरंत उनको प्रणाम किए, प्रणाम करके कहा थोड़ा सा मुझे भिक्षा दो। तो झाड़ू मारने वाले कहा कि आप इतने महान संत हो, मैं तो झाड़ू मारने वाला हूं, मेरे पास इस प्रकार ठीक नहीं, उचित नहीं है, तो आप ये तो पता निम्न हूं, मैं नीच हूं। तो जगन्नाथ दास बाबा ने पूछा कि आप बताओ कि व्रज का महिमा क्या है, बताओ। तो उन्होंने कहा कि व्रज का महिमा ऐसा है कि ब्रह्मा शिव बड़े बड़े देवता लोग भी व्रज का दूल को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। तब जगन्नाथ दाऊद ने कहा तुम रोज व्रज का दूल को झाड़ू मार रहे हो, तुम व्रज का दूल का सेवा कर रहे हो और दो धूल जो है झाड़ू कर मारते मारते वो स्वयं तुम्हारे ऊपर आके गिरता है कि नहीं, तुम नहाते उस धूल में तो तुम्हारी महिमा कितना बड़ा, देखो ब्रह्मा शिव इंद्र बड़े इतनी से बड़ा है तो मैं जाके तुमसे नहीं मांगूंगा, तुम महान है तो कौन हो फिर। तो वैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के अनेकों ये है। उनके पास दो विग्रह थे, एक विग्रह पहले मंगाया था गौरनेता के विग्रह, वो कहीं और बंगाल में एक जगह है, और दूसरा विग्रह जो है अभी वृंदावन में आपको सोनार गौरंग करके वो एक मंदिर है उधर आपको प्राप्त होगा। उस समय ऐसा था कोई चोर लोग आए थे, वो चोर लोगों ने क्या किया आगे बोला हम चोरी करेंगे, हमको सोना चाहिए। जगन्नाथ बाबा ने कहा ठीक है जो चाहे लेके जाओ। उन्होंने सोचा कि जोर नहीं था जो सोने से बना हुआ है, अंदर जाके सब सामान वामान जो धान लेके गए, लेके जब जा रहे थे अचानक क्या हुआ उजाला दिखाई पड़ा उनको, और भागते भागते जब जा रहे थे अचानक एक चोर दूसरे चोर से टकराए और दो गौरनेता विग्रह नीचे गिर गए उधर ही रह गए। यानी गौरनेता का ऐसा था कि जगन्नाथ दास महाराज से ही उनको सेवा स्वीकार करना चाहिए। और बात यह है कि अंत में जगन्नाथ दास बाबा जी का विशेषता यह है कि उन्होंने गौराविर्भाव भूमेश्वर निर्देशा निर्देशन किया। किसका निर्देशन किया उन्होंने? गौर आविर्भाव चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य स्थली। उसमें जगन चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य स्थली के रूप में चार पांच जगह थे, क्योंकि वो लोग सोचते ये चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य स्थली, ये चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य स्थली, लोग आएंगे दक्षिणा देके जाएंगे। प्रायः सभी तक गंगा के उस पार नवद्वीप, अभी जो नवद्वीप सिटी है उधर था। लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर को मालूम था ये ठीक जगह नहीं है। तो जब एक बार भजन कर रहे थे भक्तिनाथ ठाकुर, तो उन्होंने गंगा के उस पार गौद्रुंदी से उस पार देखा नवद्वीप में जो अंतरद्वीप कहा जाता है, उधर उन्हें एक बड़ा सा प्रकाश प्रकट होते हुए देखा। तो भक्तिनाथ ठाकुर अगले दिन गए उधर उस स्थान पे। उधर कुछ मुसलमान थे, उन्होंने पूछा कि ये जगह किसका है, क्या कौन है, क्या है इधर? तो उन्होंने कहा कि बड़ा भयानक जगह है इधर, बहुत डेंजरस जगह है, हम नहीं जाएंगे इधर। वो किसका है? तो कुछ मुसलमान का जगह था वो। तो उसने कहा कि आपको चाहिए तो ले लो, क्योंकि बहुत खतरनाक जगह है। क्या होता है इधर, हम जब भी जाते हैं ना उधर कुछ कीर्तन का आवाज सुनाई पड़ता है, कोई रहता नहीं कि कीर्तन का आवाज सुनाई पड़ता है, अगर उधर कुछ भी बीज डालो तो केवल तुलसी उगता है उधर। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा बहुत अच्छी बात है इसी जगह को ढूंढने के लिए आया हो। तो उन्होंने लिया, लेकिन उधर के लोगों को विश्वास जगन्नाथ दास बाबा जी इतना था, जो जगन्नाथ दास बाबा जी कहेंगे वो ठीक है, उनका इस प्रकार का विश्वास था। तो जगन्नाथ दास बाबा जी जब उनको बुलाया गया था उस स्थान पे, आते तुरंत गौरा गौरा करके निकीर्तन करने नृत्य करने लगे। तब उन्होंने कहा कि यही जो है जगह है जो चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक स्थान है। जब खास करके जो जब कीर्तन चला करता था, कीर्तन करते हुए, तो उनका दो ही प्रकार के वाक्य निकलते थे उनके मुख से। उनको इतना ज्यादा बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन दो ही प्रकार के वाक्य निकलते थे उनका। एक बात है, ओ निताय, तुमने कौन सा किस प्रकार का नाम लेके आए हो और किस प्रकार का नाम दिए हो? हे निताय, तुमने कौन सा नाम लेके आए हो और किस प्रकार का नाम दिए हो? क्योंकि एक बार वो लेता हूं तो मैं पागल हो जाता हूं। तो इस प्रकार निताय के ऊपर हमेशा इस बात को बोला करते थे जगन्नाथ दास बाबा जी की। ये जगन्नाथ बाबा जी के विषय में कुछ बात है। खास करके हम ये वैष्णव कैलेंडर जो हम आजकल पढ़ते हैं पंचिका, वो भक्तिनाथ ठाकुर के जो पुत्र है भक्तिदास ठाकुर, उस समय 15 साल के थे। उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी इनको बुलाया, ने कहा तुम बड़े विद्वान हो, मैं सुना सिद्धांत शास्त्र में सूर्य सिद्धांत में, तो तुम वैष्णव पंचिका बनाओ। उस समय वैष्णव का तिथि कौन सा, आविर्भाव तिरोभाव, ये सब चीजें लोगों को इतना अच्छी तरह से मालूम नहीं था। तुम वैष्णव पंजिका बनाओ करके जगन्नाथ दास बाबा जी ने भक्तिदास ठाकुर को आदेश दिया था। तो वो आदेश के अनुसार आजकल हमको वैष्णव कैलेंडर मिलता है ना, वो इस हिसाब से हमको वैष्णव कैलेंडर उनको प्राप्त होता है। ये थोड़ा सा जगन्नाथ दास बाबा जी विषय में है। और आज का और एक विशेषता ये है कि रसिकानंद प्रभु का है। तो रसिकानंद प्रभु जो है उनके विषय में तो बहुत सुंदर ग्रंथ भी है, लेकिन सार रूप में ये है रसिकानंद प्रभु राजा के पुत्र थे और उनने शरण लिया श्यामानंद पंडित से। श्यामानंद पंडित का शरण लेके उनके गुरु के प्रति इतना अच्छा श्रद्धा था, श्यामानंद शतकम, श्यामानंद आश्रय शतकम करके 100 श्लोकों वाली बहुत सुंदर शतकम को रचना किया। बाद में भागवत अष्टकम को रचना किया और व्रज केली अष्टकम को भी उन्होंने रचना किया। और उनका विशेषता ये था कि सबसे निम्न लोग हैं मुसलमानों को प्रचार करते थे और उनका हाथी को प्रचार किया, शेर को प्रचार किया, उनका एक खासियत है। और उनका जो तिरोभाव जो है बड़ा अद्भुत तरीके से हुआ। अचानक जो उन्होंने रिमुना में गए, रिमुना जहाँ किरचोर गोपीनाथ है, किसी को पता ही नहीं, घर से निकल गए रिमुना से, रिमुना पहुंच गए और उधर सबको बुलाया, तुरंत प्रवचन देने लगे, प्रवचन देते देते कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन में अचानक गायब हो गया, लोगों ने देखा कहाँ है वो, सीधा गए किरचोर गोपीनाथ के विग्रह को, अपने चरण को स्पर्श किया और बाहर आके अपने शरीर को त्याग किया। ये बड़ा अद्भुत तरीके से रसिकानंद प्रभु ने अपना शरीर को त्याग किया। ये दो महान वैष्णव का तिरुभाव दिवस है, श्री तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भी तिरुभाव दिवस है। तो महाप्रभु तमाल कृष्ण महाराज, जितनी प्रभुपाद से जितनी डांट मिली और किसी को नहीं मिली होगी, सबसे ज्यादा तमाल कृष्ण महाराज को डांट देता था। उनके प्रसंग में एक बहुत छोटी सी बात याद है, क्योंकि उनके शिष्यों के द्वारा ही मुझे प्रचार किया, मैं भक्ति में आया शुरुआत में, और उनके प्रवचन से बड़ा प्रभावित हुआ था शुरुआत में। जब पहला ही प्रवचन उनका था मेरा, या उनका लाइव नहीं था, वो वीडियो प्रवचन है ना उनका, गॉड्स डेमी गॉड्स करके, वो बहुत अच्छा सुंदर उनका वीडियो सुन के बड़ा प्रभावित हुआ। सोचा कि इतने विदेशी लोग इतना अच्छा प्रचार करते, इतना श्लोक बोलते, मैं क्या हूँ। तो उस समय सोचा था कि अभी बस अभी इस्कॉन को कुछ करना है। तो गतमाल कृष्ण महाराज एक बार, राधा दामोदर पार्टी बहुत अच्छा चल रहा था उनका, अचानक क्या हुआ, तमाल कृष्ण महाराज का खासियत ये था, कहीं कोई भी मंदिर में जाएंगे, सब मंदिर में ब्रह्मचारी को उठा के बस पार्टी में डाल के लेके जाएंगे, मंदिर तो खाली हो जाता है, सब प्रेसिडेंट लोग परेशान उनसे, प्रभुपाद जो कंप्लेंट किए, ये तमाल कृष्ण महाराज आते हैं हमारे मंदिर में आके संकीर्तन की वगैरह में बड़ा प्रवचन देते हैं और जितने ये भक्त है बड़ा प्रभावित होते थे और मंदिर खाली हो जाता है, बस में चले जाते, बस पार्टी में चले जाते हैं। कम से कम 100-150 बस था उनके पास। तो ऐसा हो रहा है तो क्या करें प्रभुपाद जी। प्रभुपाद ने बुलाया तमाल कृष्ण महाराज को, बुला के कहा कि यू स्टॉप दिस बस पार्टी, खाली एक ही वाक्य, तो बस पार्टी बंद कर दो। देखिए इतने सालों का मेहनत, इतना बड़ा बस पार्टी सब कुछ हुआ कि एक शब्द में प्रभुपाद ने कहा बंद कर दो। तमाल कृष्ण महाराज ने कहा प्रभुपाद यू वांट मी टू गो टू चाइना देन। उस अंग्रेज अमेरिका में ऐसा था, गोइंग टू चाइना मतलब क्या है, कोई ऐसा बेकार बेकार बन जाना, तुम बेकार हो जाओ। अगर मान लो कि घर में कोई बच्चा बराबर पढ़ाई नहीं करता है, माँ बोलती थी उसको तुम चले चले जाओ। जैसे हम बोलते ना कि हमारे घर में कोई बच्चा बराबर पढ़ाई नहीं करता, गांव गांव जाके गाय भैंस को देखभाल करो। ऐसा बोलते ना, उस समय ऐसा था कि तुम जाओ और चेहरा चले जाओ। तो प्रभुपाद ने कहा यस यू शुड गो टू चाइना। तो तमाल कृष्ण महाराज का उद्देश्य ये था कि मुझे इस प्रकार भेज रहे हो तेरे मतलब। तब उन्होंने आदेश दिया चेना जाने की, आदेश दिया उधर जाके चेना में सबसे पहला प्रचार उन्होंने शुरू किया चेना में। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था उनको कि चेना विल बी द लास्ट बट द बेस्ट। चेना जो है वो आखिरी में उनके उधर प्रचार होगा लेकिन बेस्ट होगा उधर। दूसरी बात है, उनके अंदर एक सपना था लेकिन अभी तक उनका वो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि उनका तिरुभाव हो गया। उनका एक सपना था, वो सब जिस सपने के बारे में एक बार प्रवचन दे रहे थे, उनका एक सपना था कि मुझे ऐसा एक निर्माण करना है। वो प्रवचन में मैं बैठा था, उनका ये सपना था कि मुझे एक यूनिवर्सिटी खोलना है, एक ऐसा विश्वविद्यालय खोलना है। कैसा विश्वविद्यालय, जो सरकार की तरफ प्रमाणिक हो और सबको PhD मिले, सब ग्रेजुएशन मिले, सब कुछ मिले। और उसमें क्या सिखाया जाएगा, वेदों के नाम के ऊपर कुछ भी सब्जेक्ट, ज्योतिष से लेके रसशास्त्र तक, वास्तु से लेके संस्कृत की ग्रामर तक, वेद के नाम पे कुछ भी सब्जेक्ट हो, हर चीज को उसमें सिखाया जाएगा और उधर उन्हीं चीजों को सिखाया जाएगा, ग्रामर से लेके संस्कृत ग्रामर से लेके छंद से लेके और सारे कर्म क्रिया कांड से लेके हर चीज सिखाया जाएगा। और उधर से जो सर्टिफिकेट होगा वो गवर्नमेंट से प्रमाणित होगा, ऐसा उनका विशेष था। हर प्रकार के शास्त्रों को सिखा सके, ऐसे सामर्थ्यवान एक यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं कि एक छोटा सा पाठशाला खोल दिया, नहीं, देखिए कितना बड़ा विचार था उनका। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी ने मुझे ऐसा कहा था। उसके लिए उन्होंने पीएचडी का पढ़ाई भी कर रहे थे, लेकिन कृष्ण का उनका कुछ और प्लान है। तो क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो कोई 8-10 साल या 15 साल 20 साल में होने वाला चीज नहीं है, वो 40-50 साल की प्रोजेक्ट है। उसके बाद कभी इस प्रकार का एक यूनिवर्सिटी निर्माण होगा जहां कोई भी चीज, जैसे आजकल लोग तरसते हैं ना, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वैसे लोगों को तरसना चाहिए। उनका ऐसा उन्होंने कहा था, तरसना चाहिए मुझे उस यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट मिले। आजकल ऐसे ना लोग सब तरसते हैं ना, मुझे डॉक्टर बनना है, सब लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। मैं कहा हमारा यूनिवर्सिटी ऐसा होना चाहिए ना, तो लोग तरसना चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए। तो जब वो ऐसा प्रवचन एक बार दे रहे थे वृंदावन में, गोवर्धन का उन्होंने जो प्रोजेक्ट लिया उन्होंने खरीदा था, उधर एक बार बता रहे थे, तो मुझे वो बात याद है अभी भी। तो उन्होंने इस बात को कहा था, लोग तरसना चाहिए, ऐसी यूनिवर्सिटी हम खोलेंगे। अभी देखिए उनका सपना किया है, उन्होंने इच्छा किया, तो कोई ना कोई आके उसको साकार जरूर करेगा। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की, शिवानंद प्रभु की, तमाम कृष्ण महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, श्री भागवतम की जय।